brutto. स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है वो तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होता जाएगा। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो, जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता, ऐसे यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो यह चेक करो, इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है, अगर यह समान मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल, अचल घर आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर है, तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो इसका परिणाम है कि कमजोर है। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको, इसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे है या आह्वान करते हो थोड़ी देरी से आती है, जब कोई बात पूरी हो जाती है पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आए। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो, ऐसे यह सूक्ष्म शक्तियां इतनी कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको, तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चलती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला, वह कभी उड़ती कभी चलती कभी चलती कला हो जाती है। बदली होता है वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी होते हो? टाइम लगता है, क्योंकि नॉलेजफुल होना तो विघ्नों की भी नॉलेज, नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज रखो, फिर सारा दिन चेक करो। तो क्या कहा बाबा ने, सदा सर्व खजानों से भरपूर हो, सदा संपन्न आत्मा अपने आप को अनुभव करते हो। संपन्न अर्थात ही भरा हुआ, और जो भरा हुआ है वो हलचल में नहीं आते हैं। चार प्रकार की हलचल बताई यहाँ पर, कौन सी? संकल्प, वाणी, संबंध संपर्क और चौथा स्वप्न। तो जो आत्मा संपन्न है, जो आत्मा भरपूर है, तृप्त है, संतुष्ट है, वो सदा अचल रहेगी। यादगार क्या है? अचल घर, चंचल घर नहीं, हलचल घर नहीं, हलचल घर नहीं, यादगार है अचल घर। तो संकल्प अचल, वाणी अचल, संबंध संपर्क या कर्म चल, और स्वप्न स्वप्न में भी हलचल न हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन याद रहता है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन क्या बताया आज, मैं मास्टर सभी शक्तिमान हूँ। संगम युग पर बाबा ने सभी ब्राह्मणों को सम्मान के सिंहासन पर बिठाया, और सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है हमारा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा ने कहा ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा ऑक्यूपेशन है। मैं अवतरित आत्मा हूँ, और अवतरित आत्मा का ऑक्यूपेशन क्या है, विश्व कल्याण या विश्व परिवर्तन। उसी तरह तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। शक्तिशाली बनने की विधि क्या है, स्मृति, स्विच ऑन ऑफ, खेल सारा स्मृति का है। प्रभु प्रीत से एक सेकंड में अशरीरी बन सकते हो, ये खेल ही एक सेकंड का है। तो केवल संकल्प कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये भगवान ने आकर क्या कराया, याद दिलाया। अब हर आत्मा में शक्तियां भरी है, अंतर में अनंत शक्तियां समाई हुई है, अंतर मन में 90% सबकॉन्शियस माइंड में 90% एनर्जी होती है, ऊपर बाह्य मन चेतन मन में केवल 10%। ये जो 90% शक्तियां हैं, वो अगर कोई याद दिलाए तो जागृत होती है। जैसे रामायण में दिखाया है, कहां पर, हनुमान, जब बात आती है कि कोई तो जाए, वो संपाति देखता है कि सीता उधर है, जामवंत कहता है, सब कहते हैं जामवंत कि तुम जाओ, वो कहता है मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, जा तो सकता हूं परंतु फिर वापस नहीं आ सकता, मेरे में शक्ति है परंतु मैं वापस नहीं आ सकता। वो कहता है हनुमान को तुम जाओ, हनुमान कहते हैं मैं कैसे जाऊं, उसको वो याद दिलाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे भौतिक माता पिता तो ये अंजनी और केसरी है, परंतु तुम शंकर सुवन हो, तुम्हारा गायन संसार में क्या है, शंकर सुवन, तुम शंकर के 11वें रुद्र अवतार हो, उसको स्मरण दिलाता है, तुम वही हो जिसने बचपन में खेल खेल में क्या कर दिया था, सूर्य को खा लिया था। तो ये तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम में अनंत शक्तियां है, तुम तो पवन सूत हो, वायु पुत्र हो, वायु के समान तीव्र गति तुम्हारे अंग अंग में समाई हुई है। फिर उसको याद आता है कि हाँ मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, और उसका मंत्र कौन सा होता है, जय श्री राम, जय श्री राम करता है, वो बड़ा हो जाता है, विशाल काया रूप धारण करता है। तो उसे अपनी शक्तियों का पता नहीं है, कोई उसे याद दिलाता है कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुमने ये कार्य किए थे, तब तो उसको याद आता है हाँ जलदी लांग गए अचरज नाही, हनुमान चालीसा में आता है ना, जल को लांग जाता है सात समुद्र। और भी आगे दिखाया कि जाते जाते उसको एक पर्वत सामने आ जाता है, वो पर्वत उससे कहता है कि सागर ने मुझे भेजा है, तुम मुझ पर थोड़ा विश्राम करो, महान कार्य के लिए जा रहे हैं। वो कहता है श्री राम के कार्य में जब मैं निकल पड़ा हूं, वहां पर विश्राम पाप है। वाक्य जो आता है इस तरह का वाक्य है, इसलिए जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं वहां पर विश्राम करना पाप कहा जाता है, इसके लिए मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। और वो आगे बढ़ता, तो जैसे देह के व्यवसाय ऑक्यूपेशन की स्मृति रहती है मर्ज रूप, इमर्ज रूप, वैसे अभी ये इमर्ज रूप में रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान के यहां बाबा ने 4 से 5 परिभाषा बताई। सबसे पहली तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात कर्म में, और किसमें, संकल्प में और कर्म में, सबको क्या अनुभव होगा, दूसरों को भी कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि ये मास्टर सर ये शक्तिशाली आत्मा है। पहला तो ये, दूसरा कि संसार की आत्मा इस समय कैसी है, कमजोर है, तो इनका कर्तव्य क्या है, कमजोर आत्माओं को शक्तिशाली बनाना। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात जिसके संकल्प और कर्म समान है। संसार की आत्मा संकल्प श्रेष्ठ कर सकती है परंतु वो कर्म में नहीं लाती। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात कर्म में नशा हो, दूसरों को अनुभव हो कि ये शक्तिशाली है, एक। दूसरा संकल्प और कर्म समान। तीसरा जब चाहे जो जिस समय चाहे वो शक्ति सामने आ जाए, हाजिर हो जाए, हाजिर हजूर आदि बुद्धि में है तो शक्तियां स्वतः ही हाजिर हो जाएगी, शक्तियां आकर्षित होगी चुंबक की तरह और स्वतः ही आ जाएगी। तो दूसरी बात है कि जब चाहो तब ये शक्तियां सारी आ जाए। जैसे उदाहरण कौन सा दिया, स्थूल कर्मेंद्रियों, स्थूल कर्मेंद्रिय हमारे वश में, तो मन बुद्धि और संस्कार ये सूक्ष्म कर्मेंद्रिय ये भी हमारे वश में हो। जिस जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे है या आह्वान करना पड़ता है, थोड़ी देरी से आती है, जब कोई बात पूरी हो जाती है पीछे स्मृति में, ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आए। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय ऑर्डर पर चल सकती है, हाथ को जब चाहो जहां चाहो चला सकते हो, ऐसे यह सूक्ष्म शक्तियां इतनी कंट्रोल में हो। तो इसके लिए क्या चाहिए, कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग अर्थात नियंत्रण, किसी भी चीज को नियंत्रण कर काबू में करके रखना है, उसे कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। और किसी चीज पर राज्य करना, शासन करना, आधिपत्य जमाना, वो है रूलिंग पावर। तो यहाँ बाबा बात कर रहे हैं कि कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। तो ये थी तीसरी, और चौथी है कंट्रोल। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात उड़ती कला, उड़ती कला या फिर चढ़ती कला, चलती कला नहीं, उड़ती कला अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। और एक चीज जो कही है वो कौन सी है, विघ्न की। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी होते हैं, टाइम लगता है क्योंकि नॉलेजफुल होना, तो विघ्नों की भी नॉलेज, नॉलेज की शक्ति से विघ्न पार नहीं करेंगे, लेकिन विघ्न वार पार हार खा जाएंगे। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात बाबा ने कभी अभ्यक्त ने कहा है, समस्याएं और विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाते हो जाए, समस्याएं और विघ्न समीप न आ सके। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए विघ्न ऐसे ही है जैसे हाथी के पाव के नीचे चींटी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात नॉलेजफुल, किसके नॉलेजफुल, विघ्नों के भी नॉलेजफुल। इसी को मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज रखो और सारा दिन चेक करो। संडे को कहा था ना, तमिलनाडु क्या कहा था, अमृत वेले मास्टर सर्वशक्तिमान का तिलक लगाओ, जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे, तिलक विजय की निशानी है। तो स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, बलशाली बनाना है, अपने अंदर शक्तियां है उन शक्तियों को जागृत करना है। कैसे जागृत करेंगे, स्मृति से, याद दिलाने से, स्वयं को स्वयं याद दिलाना, स्वयं को स्वयं तिलक लगाना, अनंत शक्ति है, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। सबसे पहले तो ये जो वाक्य है इसको स्वीकार कराना है मन को, दो चीजें करनी होती है, सबसे पहले स्वीकार कराना और दूसरा उसे मन की आंखों से देखना। सबसे पहले इस वाक्य को अंतर मन को स्वीकार कराना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। किसने कहा, स्वयं सर्वशक्तिमान ने कहा। कब कहा, संगम पर कहा। किसे कहा, मुझे कहा। इसके लिए उसने जो कहा वो सत्य है और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। तो अंतर मन अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड अर्ध जागृत मन इस बात को अंदर ही अंदर स्वीकार कर ले, उसको स्वीकार कराने के लिए जो चेतन मन है, जो बाह्य मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, जो आउटर माइंड है, उसे जितना शांत कर दोगे उतना ही वो संकल्प अंदर जाएगा। तो योग की श्रेष्ठ स्थिति में, अशरीरीपन की श्रेष्ठ स्थिति में भी ये संकल्प करना कि मैं अति शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बलशाली आत्मा हूं, शिव की जो शक्ति है वो मुझ में है, मैं शिव शक्ति हूं। भिन्न भिन्न शब्दों में, भिन्न भिन्न रीति से, तरीकों से उसके उसको अपने मन को स्वीकार कराना। असंभव शब्द ब्राह्मणों की शब्दावली में नहीं है, समर्थ आत्माओं की शब्दावली में नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है। कल कहा था संकल्प में क्या, वो बोल में क्या, संकल्प में भी मुश्किल और कौन सा शब्द नहीं आ सकता, वरदान था पर मेहनत। संकल्प बोल में तो क्या, वाणी में तो क्या, संकल्प में भी नहीं आ सकता कि ये कार्य मुश्किल है या ये कार्य इसमें मेहनत है, क्योंकि हम सब कौन है, सर्वशक्तिमान आत्मा है। भगवान ने संगम युग पर आते ही सबसे पहला एक तो वरदान दे दिया और गिफ्ट दे दी, सर्वशक्तियों की गिफ्ट दे दी और पवित्रता का वरदान दे दिया, योगी भाव पवित्र भाव, ये वरदान दे दिया और गिफ्ट एक दे दी साथ में, कौन सी, अपनी सर्वशक्तियां। तो जो शक्तियां उसमें है वो सभी शक्तियां मुझ में भी है। तो धीरे 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 शांत चित्त से इस बात को अपने अंदर में स्वीकार कराना है कि मैं वास्तव सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मुझ में अनंत शक्तियां समाई हुई है, इस संसार का कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं शिव शक्ति हूं, शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं। कब स्मरण कराना है, अमृत वेले। तो बाबा ने कहा यह आत्मा का ऑक्यूपेशन है, अगर इस तरह आत्मा शक्तिशाली रही तो वो कैसी रहेगी, संपन्न भरपूर, फिर हलचल नहीं आएगी, नहीं तो हलचल होती रहेगी, स्वप्न में हलचल होगी और संकल्पों में हलचल होगी, संकल्पों की हलचल को भी समाप्त करना है, वाणी की हलचल वो बात की बात है, संबंध संपर्क की हलचल, कर्मों की हलचल वो तो दूर, यहाँ बाबा बात कर रहे हैं स्वप्न की हलचल और संकल्प में भी हलचल ना हो। आज बाबा ने कहा है स्त्री और पुरुष इस भान से भी परे, ये बहुत मुश्किल है, पर बाबा ने कहा पर मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं कर सकती है, अगर देह दिख रहा है तो हलचल होगी और इसकी एक ही विधि है बस, इस विधि संसार की आत्माओं में भी ये जाना कि ये जबरदस्त आकर्षण है, परंतु विधि को कोई ढूंढ नहीं पाया, उन्होंने विधि कौन सी अपनाई, हिमालय जाने की, घर बार छोड़कर संन्यास लेने की, देखना ही नहीं है, ना ये उसको देखे ना वो उसको देखे, हाँ देख लिया तो गए उन्होंने वो विधि अपनाई, तो बाबा कौन सी विधि बता रहे, आत्मा, पहला पाठ ही वही है कि मैं आत्मा हूं, तो मैं ये देह भी नहीं, ये स्त्री और ये पुरुष भी नहीं, ये देह के व्यवसाय भी नहीं, ये देह के जो संबंध है वो भी नहीं, ये देह के धर्म है वो भी नहीं, ये जो भाषा है देह की वो भी नहीं, कुछ नहीं, ये सब एक तरफ, मैं कौन हूं, आत्मा, कर्तव्य विश्व परिवर्तन विश्व कल्याण या फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, इस स्वरूप में स्थित रहना, स्वयं आत्मा आत्मिक स्वरूप में रहना और सबको आत्मा देखना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आत्मा यहां जो है वहीं पर जो ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, तो ये जो हाइपोथैलेमस की शरीर की जितनी ग्रंथियां हैं ग्लैंड, उसका मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। आत्मिक स्वरूप में यदि हम स्थित हैं तो वहां से जो वाइब्रेशन निकलते हैं उस ग्लैंड को जाएंगे और उस ग्लैंड के बाकी जो भी इंद्रिय है ग्रंथियां है उसको वो शीतल करेंगे, नहीं तो अगर देह दिख रहा है तो वो जो ग्रंथि है वो हलचल में रहेगी और उसमें से ही जो हार्मोन्स है सेक्सुअल हार्मोन वो निर्माण होते हैं, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। वो रोका जा सकता है केवल आत्माभिमानी स्थिति में। तो मैं आत्मा हूं और जो भी दिख रहा है, जो भी हम जिसको भी हम देख रहे हैं, वो सभी आत्मा है। ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास, ये आत्मिक दृष्टि की साधना, ये साधना है, टेक इट एज साधना, ये एक साधना है। इस साधना से ही आत्मा प्यूरिटी में स्थित हो सकती है, नहीं तो निरंतर हलचल होती रहेगी, देह ही दिखते रहेगा। बाबा कहते हैं ना तो संकल्प में भी हलचल ना हो, संकल्प में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। स्वप्न उससे भी सूक्ष्म है, सारे दिन भर में जो कुछ देखा वो और जन्म जन्म के का जो भी स्टोर्ड है सबकॉन्शियस माइंड में, देखा नहीं, वो कहीं से भी कुछ भी निकल के किसी भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ तो नया निर्माण करके निकलता है, या फिर जो बहुत गहरी स्मृति है वो उसमें दिखेगा। जो 10 साल पहले वाली भी बात होगी वो भी उसमें दिख सकती है, कभी पूर्व जन्म का भी दिख सकता है, किसी को जो होने वाली घटना है वो भी दिख सकती है, कुछ भी दिख सकता है। या फिर जो विकार अदृश्य है, चित्र है, बोल है, संकल्प है, वो भी वहां पर प्रकट हो सकते हैं। दिन भर की दिनचर्या तो ठीक है, पर पूर्व में भोगे गए भोग की स्मृति वहां पर है। अगर योग से उसे नष्ट ना किया जाए तो वो निकलकर कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो बैरियर है वो रात में जैसे खुल रहा है और यहाँ की बातें इधर आ रही है, उससे ही वापस बैरियर बीच में आ जाता है। तो यहाँ का सब इधर है। तो स्वप्न एक बैरोमीटर है, एक मापदंड है किसका, पवित्रता का, जिसके स्वप्न भी पवित्र है या फिर स्वप्न रहित नींद है वो आत्मा उतनी प्योर है। संकल्प में भी हलचल नहीं, स्वप्न में भी हलचल नहीं, वाणी में भी हलचल नहीं, और चौथा संबंध संपर्क या कर्म, ये तो बहुत स्थूल हो। जब वहां हलचल है तो यहां हलचल होनी ही है। इस हलचल को रोकने से पहले उस हलचल को रोकना पड़ेगा तो ये हलचल रुकेगी। केवल शरीर को रोकने से वो वहां दमन होगा, दमन से विक्षिप्तता, पागलपन, इंसैनिटी उत्पन्न हो। इसके लिए क्या सुना, सभी सर्व खजानों से सदा भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, हमें यह अनुभव हो कि सर्व खजाने से मैं संपन्न हूं। केवल खजाने में जो दिव्य गुणों की लिस्ट है उसमें से एक एक लिस्ट में से ये गुण से मैं संपन्न हूं, ये गुण से मैं संपन्न हूं, ये गुण से मैं संपन्न हूं, यह भी अनुभव। गुणों से संपन्न, खजानों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, और जो संपन्न होगा वो हलचल में नहीं आए। यादगार क्या है, अचल। और जो कमजोर आत्मा है उनको क्या करना है, शक्ति, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर है। संसार की आत्माएं कैसी है, कमजोर। क्यों कमजोर है, क्यों कमजोर है संसार की आत्माएं, विकारों के अधीन है, वश है, उनमें ज्ञान नहीं है, इसके लिए कमजोर है। तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, कमजोर आत्माओं को शक्तिशाली बनाना, वच बोल के द्वारा या मनसा शक्ति के द्वारा, प्रोत्साहन देके वो अलग बात है, शक्तिशाली या अपनी धारणाओं के कारण, धारणाओं से। जितनी प्यूरिटी की धारणा हम में है उतने ही प्यूरिटी के वाइब्रेशन हमसे दूसरों को जाएंगे, उतने हम शक्तिशाली बनेंगे। और शक्तिशाली बनने की एक विधि तो है स्मृति, दूसरी विधि है मनन, तीसरी विधि है पवित्रता, समान, ये सब चीजें हैं जिससे हम शक्तिशाली बन सकते हैं। साक्षी दृष्टा बहुत सारी है पर मेन मेन दो तीन है। ज्ञान का मनन करते रहेंगे तो शक्तिशाली हो जाएगी आत्मा। तो जो चाहे जिस शक्ति का जब आह्वान करना चाहे तब वो शक्ति आ जाए। जितना हम समान में स्थित है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, बलशाली आत्मा हूं, तो वो शक्तियां स्वतः ही काम करेगी, बुलाना नहीं पड़ेगा। विमर्श या सहन कोई भी शक्ति हो, स्वतः ही काम करने लगती। और फिर नेक्स्ट है चलती कला। एक चीज जिसको छोड़ दिया उसको फिर वापस धारण नहीं की, जिस कमजोरी को छोड़ दिया उसको वो वापस ना आए, जिस चीज को छोड़ दिया वो वापस ना आए। हमारी कौन सी कला हो, हमारा ग्राफ जो है पुरुषार्थ का कैसा हो, ऊपर। ब्राह्मणों का ग्राफ ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे ऐसे। ईसीजी में हम नॉर्मल रिदम को रेगुलर रिदम कहा जाता है। अगर इरेगुलर रिदम है तो उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अगर एक्स्ट्रा बीट बीच में आ रहे हैं तो उसकी भी ट्रीटमेंट की जाती है। अगर बहुत ऐसे ऐसे आ रहा है तब तो शॉक देना पड़ता है फिर कभी कभी। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में शॉक, तब पेशेंट बेहोश रूप में आता है, जो बहुत ही ज्यादा कैंसर होती है, तो शॉक देना पड़ता है। बीपी नॉट रिकॉर्डेड, कभी कभी बहुत सारे शॉक देने पड़ते हैं, तो वो हलचल है। और यहां हमारा पुरुषार्थ का ग्राफ कैसा, रेगुलर और पंक्चुअल, रेगुलर वो बढ़ता जाए। कल जो हमारी स्थिति थी आज उससे हम आगे, कल जो संकल्प थे उससे हम बेहतर और बेहतरीन, दोनों चीजें उससे और खूबसूरत, जो कल के संकल्प थे और आज के संकल्प। और लास्ट में बाबा ने कहा विघ्नों के लिए, जितने हम शक्तिशाली हैं तो विघ्न हमारा कुछ नहीं कर सकते, वो वार नहीं कर सकते, और करे भी तो हार खाएंगे, करे भी तो हम उससे सीखेंगे और शक्तिशाली बनेंगे। जैसे हनुमान सागर लांग रहा है, कितने विघ्न आए उसे, वो फिर वो सुरसा आई, फिर और भी कुछ आया, एक 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 राक्षस आता है, और वो काल में भी एक बार वो दिखाते हैं, वो आया, अलग अलग जगह अलग अलग विघ्न आए, पर वो और शक्तिशाली हो गया। तो समान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, कर्मों में भी ये नशा रहे कि दूसरों को भी कि लगे ये शक्तिशाली है। कर्म और संकल्प समान, जो शक्ति चाहिए वो शक्ति आ जाए, और सदा चढ़ती कला, और लास्ट में विघ्न हमारे सामने कुछ ना हो। तो ये है समान। अभी हम कल से इस पढ़ने की विधि में थोड़ा चेंज करेंगे, बहनों से चालू करते हैं। पूर्णिमा में ये कल आप पढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। केवल पढ़ना नहीं, इसके ऊपर पहले चिंतन करके आओ। मुरली है 2 दिसंबर 1993 की चालू है, उसका ग्रुप नंबर 3, उसका टॉपिक है हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी बनो, अपने भाग्य का गीत सदा गाते रहो। तो इस मुरली को पहले पढ़ना, पढ़कर फिर बिना पढ़े बिना देखे उसका इंटरप्रिटेशन एक एक का चालू करेंगे कल से। पहले बहने उसके बाद में फिर इधर भाई, टाइम बस टाइम से आ जाए, 5 मिनट पहले आ जाना। तो पहले आप तो पढ़ेंगे पूरा, फिर उसके बाद में उसका बिना देखे समराइज, और कुछ कुछ उदाहरणों द्वारा जीवन के, शास्त्रों के, भक्ति के, प्रैक्टिकल लाइफ के, पूर्वजों के, दादियों के, अपने, दूसरों के, जूनियर सीनियर्स से उस बात को और अच्छी तरह एक्सप्लेन करना। जब कार्य दिया जाता है तब बुद्धि और ज्यादा एकाग्र होती है उसका, नहीं तो खाली सुन लिया बहुत अच्छा था, उससे नहीं होता है। ठीक है, फिर माता जी आपका नंबर बाद में, सबको हर एक का नंबर आएगा अभी, ठीक है ना। अभी बहनों से चालू कर दें। हाँ, पहले तो ज्ञान कलश माता को फिर तो रखना पड़ेगा, सबसे पहले बोलो। बाबा ने कहा सबसे पहले पूर्णिमा बहन ग्रुप 3, उसके बाद डॉक्टर हीना ग्रुप 4, उसके बाद में माता जी ग्रुप 5, ये 3 अभी 3 दिन के लिए, उसके बाद में आगे, ठीक है ना। मदद करने की नहीं, ये छोटा 5वां तो माता जी का बहुत छोटा है, फिर ये डॉक्टर ही ना राज ऋषि अर्थात स्वराज्य के साथ साथ देहत के वैरागी बने। तो और इससे संबंधित बाबा के और मूल्यों में क्या क्या वाक्य थे, क्योंकि जो भी वाक्य आते हैं वो केवल वही नहीं आए हुए, ये रिपीट हो चुके हैं बहुत बार। थोड़ा टेंशन होना चाहिए, स्पिरिचुअल टेंशन, क्योंकि जब तक टेंशन नहीं तब तक अटेंशन नहीं। टेंशन तो होना ही चाहिए थोड़ा, नहीं उनको टाइम थोड़ा 3-2 दिन है। नहीं वो बहुत पढ़ दिया, सुन बहुत लिया, अभी सुनना नहीं है, अभी उसको अलग रीति से। ठीक है, ये 3 दिन 3 लोगों के लिए है, 3 लोगों के बाद फिर भाइयों की तरफ, फिर और बहनों की तरफ, फिर भाइयों की तरफ, फिर बहनों की तरफ, चलेगा? नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, जो फिर उसके बाद में अरविंद भाई, नागेश भाई और मिथिलेश भाई, ये 3 उसके बाद, पहले इधर 3 और फिर इधर 3। बस एक ही है, अगर एक कोई एक्स्ट्रा भी तैयार रखे, अगर वो नहीं आए तो
नहीं, सब आएंगे।
नहीं नहीं, जिसको बोला है अगर वो जैसे आया ही नहीं, बिल्कुल पांडव बोल में नहीं आया तो फिर क्या करें? नहीं, फिर हम सुशील भाई एवर रेडी रहेंगे तैयार। अगर नहीं, वो रोज का है, अगर कोई नहीं आता है तो उनको रोज रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई नहीं आता है, एक बार पढ़ना और दूसरी बार इसको इधर रख देना और फिर उसको बताना। एक बार पूरा पढ़ना और फिर उसके पॉइंट्स कितने, जैसे आज का था मास्टर सर्वशक्तिमान, बाबा ने चालू कहां से किया, संपन्न आत्मा हो, संपन्न नहीं है तो हलचल में आ रही, हलचल में है 3-4 प्रकार की हलचल, 4 प्रकार की हलचल क्यों है उसका फिर ऑक्यूपेशन क्या, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, जैसे वो ऑक्यूपेशन बाबा उदाहरण दे रहा है, ये भूलो मत, उसमें से उदाहरण क्या क्या दे रहा है वो निकालना, एग्जाम्पल, हर चीज बाबा कुछ ना कुछ बता के देता है, जैसे जैसे प्रोफेशन याद रहता है वैसे ये याद रहो, जैसे वो हाथ पैर अपने कंट्रोल में वैसे ये, तो वहां से बाबा ने मास्टर सर्वशक्ति, अभी मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी कर्मों में क्या लिखी, तो नशा दिखता है, अनुभव होता है, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात संकल्प और बोल समान, मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात जो शक्ति चाहे उस समय आ जाए, मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात चढ़ती कला, मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात विघ्न, मास्टर सर्वशक्तिमान को ये 4 या 5 बातों से जोड़ा है इस मूर्ति में। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ कहा हुआ है, वो आपको ढूंढ के लाना है, जो बताया है वो तो ठीक है, वो तो बताना ही है, वो भी बताने के लिए उसको पकड़ने के लिए उस पॉइंट्स को बुद्धि को सूक्ष्म करना होगा, उसको बड़ी एकाग्रता से बड़े कॉन्सेंट्रेशन से पहले ही पढ़ के लाना है, केवल सुनने से कुछ नहीं होता, इधर से सुना और इधर से गया, ये याद रखना। अच्छा ठीक क्योंकि बुद्धि इतनी साफ है ना ब्राह्मणों की, पूरा आराम से चला जाता है। जब तक हमारे जो ये है दिनचर्या लगी हुई है पांडव वन की, उसमें 2 से 4:30 के बीच में क्या लिखा है, तो जो दिनचर्या लिखी है ना दोपहर की, जो पूरा पांडव वन की दिनचर्या कहां लगी हुई है, हिस्ट्री हॉल के पास लगी हुई है, उसमें 2 और 4:30 के बीच में क्या लिखा है, नहीं क्या लिखा है, स्टडी नहीं, विश्राम तो है, और भी एक चीज लिखी, अध्ययन भी नहीं, बहुत पावरफुल शब्द लिखा है, क्या लिखा है बोलो देवेंद्र भाई, 2 और 4:30 के बीच में क्या लिखा है, मनोज भाई टी ब्रेक, स्वाध्याय, क्या लिखा है, स्वाध्याय और विश्राम, ये 2 शब्द लिखे, स्वाध्याय अर्थात सुनना नहीं, स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय अर्थात स्वयं अध्ययन करना और उसको धारण करना अर्थात स्वाध्याय, स्वाध्याय बहुत बड़ा शब्द है, क्या लिखा है वहां 2 और 4:30 के बीच में, स्वाध्याय करना और विश्राम करना, स्वाध्याय करेगी तो अच्छी नींद आएगी, फिर विश्राम अच्छा होगा, तो स्वाध्याय अर्थात स्वयं पढ़ना, ठीक है, तो स्वाध्याय करो। अगर एब्सेंट कोई रहता है तो पहले इधर इंफॉर्मेशन दे देना। अगर कोई बंक करना चाहता है, क्योंकि वो सबसे आसान है, जाना ही। और फिर बाद में तो बहाने तो हमारे पास इतने हैं, ज्ञान युक्त बहाने हमारे पास, शरीर साथ नहीं दे रहा था। ये समय तो मेहमान आ नहीं सकते, पर रात में नींद नहीं आई, 3 बजे तो नींद लगी, या फिर रात में लेट नींद आई, या फिर सिर दर्द हो रहा था, या फिर पेट दर्द हो रहा था। सिर दर्द तो ऐसा दिखता थोड़ी ना दूसरों को, बोल दिया तो हो गया बस, कोई उसका कोई ये तो है ही नहीं कि माइक्रोस्कोप में कोई देख के बताए क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, बताओ। हो रहा था बस, स्वीकार करना ही पड़ेगा आगे वालों को। तो अगर कोई नहीं आता है तो 12 घंटे के पहले इधर बताना इन्फॉर्मेशन, ताकि सुशील भाई 12 घंटे में पूरा तैयार हो जाए। नहीं, आप तो एक बैकअप तो रखा है, अभी दूसरा बैकअप भी मैं आराम करूंगा ना अभी। मंजू में बैकअप, हाँ मैं रहूंगा नहीं, यहाँ बैठूंगा, हम तो रहेंगे, पर बैकअप के लिए फर्स्ट बैकअप, आप सेकंड बैकअप बन जाओ, सेकंड बन जाएंगे ना, तो आपको रोज का पढ़ना पड़ेगा। तो ये किताब है ना सबके पास, नहीं होगी तो ले लो, नहीं होगी तो 93-94 ले लो, इसको पढ़ के इधर आना, जो जिनको नहीं है वो भी पढ़ के आना, ताकि पहले ही पढ़ के जब आते हैं, पढ़ना कब ये भी प्रश्न है, तो रात को सोते समय वो उतना ही का ग्रुप पढ़ना, बस एक ही ग्रुप सोते पढ़ते पढ़ते सो जाओ, और फिर यहां आओ तो जागृति आ जाएगी। अगर कोई गलत बोले तो बोलना ऐसा नहीं ऐसा है। ज्ञान में लड़ाई हुई तो ठीक है, अच्छी बात है। स्वाध्याय तो आज से चालू करना, स्वाध्याय। शास्त्रों में 3 बातें हैं, स्मरण, मनन, निधिध्यासन। स्मरण पहले श्रवण सुनना, फिर मनन करना, और एक शब्द होता है निधिध्यासन। निधिध्यासन अर्थात उसका चिंतन गहराई से, उसको प्रैक्टिकल देना, अनुभव करना और प्रैक्टिकल देना। तो ठीक है, पूर्णिमा बहन आप करते हैं, एक्सेल में करेंगे। ओम शांति।